भागवत की कथा है तो परम कल्याणकारी, लेकिन जिस पर भगवान की विशेष कृपा होती है उसी को सुलभ होती है, नहीं तो देवताओं को भी ये कथा दुर्लभ है। जय सुखदेव गोस्वामी। श्रीमद् भागवत की कथा महाराज परीक्षित को सुनाने वाले थे तो देवता अमृत का कलश लेके आ गए सामने। सुखदेव जी को प्रणाम किया, महाराज प्रणाम करते हैं। सुखदेव गोस्वामी ने देखा कि देवता आज बड़े प्रसन्नता से प्रणाम कर रहे हैं, कुछ इनका कुछ न कुछ इनका मतलब ही होगा। तो देवताओं ने सुखदेव गोस्वामी से कहा, प्रभु आप महाराज परीक्षित को जो कथा सुनाने वाले हैं इसीलिए कि उन्हें 7 दिन में मृत्यु का साप लगा हुआ है, तो हम अमृत लेकर के आए महाराज परीक्षित को, अमृत दे दो और बदले में भागवतामृत हमें दे दो। सुखदेव गोस्वामी ने देखा कि देवता श्रीमद् भागवत कथा के सुनने के अधिकारी नहीं है, क्योंकि इनके हृदय में कपट है। ये भागवत की कथा का मोल तोल करने के लिए आए कि अमृत के बदले में और भागवतामृत का पान हमें करा दो। ये नंबर 1 की ठगियां हैं और बहुत बड़ी ठगियां हैं। इतने बड़े ठगियां हैं कि थोड़ी सी कीमत में बहुत अमूल्य वस्तु लेना चाहते हैं। कोई कथा को सुधा लो के ब्रह्मरातो सुखदेव गोस्वामी बोले, देवताओं तुम नंबर 1 के ठगिया हो। अरे जैसे कोई व्यक्ति एक कांच के बदले में मणि मांगना चाहे, से मणि बदलना चाहे, कितना बड़ा ठगिया है। तो उसी प्रकार इस श्रीमद् भागवत की कथा एक अमूल्य मणि है, अमूल्य मणि। और ये अमृत एक कांच के टुकड़े के समान है। तो ऐसा कौन मूर्ख होगा जो कांच के टुकड़े से और अमूल्य मणि को बदले। कहने का तात्पर्य है, सुखदेव गोस्वामी ने देवताओं को कथा सुनने का अनाधिकारी समझा। तुम सुनने के अधिकारी नहीं हो, उन्हें कथा नहीं सुनाई। इस श्रीमद् भागवत की कथा देव दुर्लभ है, देवताओं को भी दुर्लभ है। जिस पर भगवान की विशेष कृपा होती है, कई जन्मों के पुण्य उदय होते हैं, तब श्रीमद् भागवत की कथा सुनने का अवसर प्राप्त होता है। नहीं तो लोग सोचते रहते हैं कि कथा कराएंगे या कथा सुनेंगे, सोचते सोचते उनकी सारी उम्र निकल जाती है और ये अवसर नहीं आ पाता। मनीष जी बड़े भाग्यशाली हमारे बीच में बैठे हुए हैं। ऐसे चतुर मनुष्य होते हैं, है ना, जब शुभ अवसर आया तो चूके नहीं। अभी हमारे ब्रजभूमि पर बता रहे थे कि हर साल ये भागवत कथा का आयोजन यही कराते हैं। ये कई जन्मों का पुण्य उदय होता है तब ऐसी भावना आती है और तब ये अवसर मिल पाता है, नहीं तो देवताओं को भी दुर्लभ है। ये देव दुर्लभ है श्रीमद् भागवत की कथा। और श्रीमद् भागवत की कथा क्या है, ये महाऔषधि है, भव रोग की महाऔषधि। क्योंकि हम सब लोग भव रोगी हैं, पुनर्व जन्म पुनर्व मरणम पुनर्व जननी चतुरे सेनम, ये भवरोग है तो संस्कृते भयात्। इस भवरोग को दूर करने के लिए, इस भवरोग की जो औषधि है, महा औषधि श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा है। जो व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक श्रीमद् भागवत की कथा सुनता है तो संसार के चक्र से ही छूट जाता है। तो श्रीमद् भागवत का जो महात्म्य है इसलिए है कि श्रीमद् भागवत को क्यों सुनना चाहिए, इसके सुनने से क्या लाभ है ना। जैसे कोई व्यक्ति शारीरिक जिसको रोग होता है तो शारीरिक रोग को दूर करने के लिए औषधि लेते हैं और औषधि पर लेबल लगा होता है कि इस औषधि को लेने की ये विधि है और इस औषधि से ये रोग नष्ट हो जाते हैं। तो उसी प्रकार श्रीमद् भागवत ये महा औषधि है, रामबाण औषधि है। इस भवरोग के लिए रामबाण औषधि है। तो इस औषधि के लेने से सभी प्रकार के रोग दूर हो जाते हैं, महात्म्य बताया है भागवत के में। और ये भी बताया कि श्रीमद् भागवत की कथा सुनने से किसको लाभ हुआ, तो भक्ति देवी को बड़ा भारी कष्ट था श्रीमद् भागवत की कथा सुनने से ही भक्ति ज्ञान वैराग्य को पुष्टि हुई। और किसको लाभ मिला, बोले धुंधकारी भी प्रेत योनि से निकल गया। श्रीमद् भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी, ये श्रीमद् भागवती कथा क्या है, बोले प्रेत की योनि से भी निकाल देने वाली है। कृष्ण लोक फल प्रदाह, और ये भगवान श्री कृष्ण के लोक को प्रदान करने वाली है। श्रीमद् भागवत की कथा को 7 दिन में सुनने का ये विधान क्यों बताया है। वैसे तो नित्यम भागवत सेवया, भागवत को नित्यम हमेशा ही श्रवण करना चाहिए, लेकिन 7 दिन का विधि विधान क्यों बताया, बोले 7 दिन का विधि विधान इसलिए बताया कि इस कलयुग में संयम और नियम को करना बहुत मुश्किल है। श्रीमद् भागवत की कथा को संयम और नियम से सुनना चाहिए। 7 दिन ब्रह्मचर्य का पालन करें और हो सके तो एक समय भोजन करें। बहुत सारे नियम बताए हैं, ऐसा नियम और अधिक क्या कहें, 7 दिन ऋषियों के जैसा जीवन बिताएं, 7 दिन ऋषियों के जैसा एकदम पवित्र जीवन बिताएं। और ऐसा पवित्र जीवन बिता करके संयम नियम रह करके श्रीमद् भागवत कथा को सुनते हैं तो परम लाभ मिलता है। वैसे नित्यम भागवत सेवा है, लेकिन हमेशा भागवत का श्रवण करना चाहिए, पर 7 दिन विधि विधान से सुनने का कुछ ज्यादा ही लाभ मिलता है। श्रीमद् भागवत में 12 स्कंद हैं, 10 लक्षण का वर्णन हुआ है इसमें, 335 अध्याय है इसमें, 18,000 श्लोक हैं इसमें। प्रथम स्कंद में शौनक आदृशियों के प्रश्न 6 प्रश्न किए हैं, उन 6 प्रश्नों पर ही संपूर्ण भागवत सूत गोस्वामी ने नेमसान क्षेत्र में शौनक आदृशियों को सुनाई। श्री प्रथम स्कंद में बड़ी सुंदर कुंती महारानी की स्तुति है। भीष्म देव की बड़ी सुंदर स्तुति है, भगवान के प्रति जो स्तुति की है बड़ी सुंदर स्तुति है उनकी। और उसी प्रथम स्कंद में व्यास जी को असंतोष हुआ था, क्या उन्होंने बहुत सारे शास्त्रों को पुराणों को लिखा, वेदों चार भाग में वेद कर दिए, 108 उपनिषद लिखे और 17 पुराण लिखे उन्होंने, 17 पुराण, फिर भी संतुष्टि नहीं हुई। फिर विशाल ग्रंथ की रचना की, किसकी? महाभारत की, जो वेदों के अर्थों को खोल दिया उसमें, फिर भी संतुष्टि नहीं हुई, असंतुष्ट बैठे हुए थे। तो नारद जी ने ही उनको बताया कि तुम्हारी जो असंतुष्टि का कारण है वो यही है कि अभी अब तक भगवान का पूरा कार्य नहीं किया है आपने। यथा धर्मादय शर्था मुनिवर्य अनुकीर्तितः न तथा वासुदेवस्य महिमा ही अनुवर्णितः। नारद जी ने व्यास जी से कहा कि व्यास जी देखो, जिस प्रकार आपने वेदों में धर्म अर्थ काम इत्यादि तीन पुरुषार्थों का वर्णन किया है, बड़े विस्तार से वर्णन किया है, अरे वैसे ही लोग संसार में वैसे ही सकाम कर्मों में फंसे हो, और वेदों में तो आपने बस इस अनुष्ठान के करने से स्वर्ग की प्राप्ति होगी, ये अनुष्ठान करने से धन संपत्ति की प्राप्ति होगी, अमुक अनुष्ठान करने से ये प्राप्ति होगी, और ये तो सब बंधन के ही कारण है। यथा धर्मादेश था, जिस प्रकार आपने धर्म आदि का वर्णन किया है विस्तार से, न तथा वासुदेवस्य महिमा ही अनुवर्णितः, उस प्रकार आपने भगवान श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन तो किया ही नहीं। और देखो, जिस शास्त्र में भगवान श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन न हो वो तो काक तीर्थ है। काक तीर्थ कहते हैं कौओं का तीर्थ स्थल, और कौओं का तीर्थ स्थल क्या होता है? बोले कूड़ादान। जहां कूड़ादान होगा, कूड़ा कचरा, वहीं कौए जाकर के बैठेंगे, वहां हंस तो जाकर के बैठेगा नहीं। हंस कहां बैठता है? एकदम निर्मल स्वच्छ सरोवर पर जाकर के बैठता है हंस। जो वैष्णव लोग हैं वो एकदम हंस के समान हैं, और वैष्णवों के लिए तो ऐसा शास्त्र चाहिए जिसमें सभी प्रकार की कामनाओं से रहित तो हो, सभी प्रकार की, यहां तक कि मोक्ष की कामना से भी रहित तो हो, मोक्ष के फल की भी कामना से रहित तो हो, ऐसे भक्त परमहंस गति के होते हैं। तो वैष्णवों को तो जिस शास्त्र में कृष्ण की चर्चा नहीं होगी वो अच्छा लगेगा ही नहीं, उनको तो काक तीर्थ जैसा लगेगा। कहने का तात्पर्य है कि नारद जी ने व्यास जी से कहा कि आप भगवान की महिमा का वर्णन करो। क्या करें प्रभु? बोले श्रीमद् भागवत की रचना करो। और देखो, मैं तुम्हें बताता हूं, और मैं कुछ अपनी तरफ से नहीं, परंपरा से आई हुई भागवत आपको बता रहा हूं, साक्षात नारायण भगवान से आई हुई ये भागवत है। भगवान नारायण ने ये श्रीमद् भागवत की कथा ब्रह्मा जी को सुनाई 4 श्लोक में, और ब्रह्मा जी ने ये श्रीमद् भागवत कथा नारद जी बोले हमको सुनाई, और नारद जी बोले वही 4 श्लोक चतुर्श्लोक की भागवत में तुमको बताता हूं। अहम एवास्मि वाग्रे नान्यत् सत्परम् पश्चात् अहम यदि तत् युवशिषे तस्वस्महम् प्रतियर्थम् यत् प्रतियेत् न प्रतियेत् चात्मनि तद्विद्यात्मनो वायाम् यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चास्वचेष्वम् प्रविष्टानि अप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञासयन् तत् जिज्ञासनात्मना अनवयव्यतिरेकाभ्यं यत् सर्वत्र सर्वदा। चार श्लोक में इसको चतुर्श्लोकी भागवत कहते हैं, संपूर्ण भागवत आ गई इसमें। नारद जी बोले व्यास जी चार श्लोक में चतुर्श्लोकी भागवत है, अब आप इसका विस्तार से वर्णन करो 18,000 श्लोकों में, तभी आपकी बुद्धिमता है। तो नारद जी के कहने से और श्रीमद् भागवत की कथा व्यास जी ने श्रवण किया। ये बिल्कुल भगवान से चली आ रही है भागवत, और व्यास जी ने 18,000 श्लोकों में इसका विस्तार से रचना की। सर्ववेदे इतिहासानां सारं सारं समुद्रतम् सतु संसावयमास महाराजं परीक्षितम्। वेद व्यास जी ने ऐसी भागवत की रचना की जो सर्ववेदे इतिहासानां सारं सारं समुद्रतम्। ये श्रीमद् भागवत क्या है? बोले समस्त वेद इतिहास पुराणों का सार है। भागवत महापुराण सर्ववेदे इतिहासानां, समस्त वेद इतिहास पुराणों का क्या? बोले सारं सारं समुद्रतम्। वेद व्यास जी ने सभी शास्त्रों का पुराणों का सार निचोड़ करके और श्रीमद् भागवत की रचना की। इसकी रचना करके और अपने जो परम वीतरागी संत थे शुद्ध भक्त, उनके ही पुत्र सुखदेव गोस्वामी को इसका श्रवण कराया। और वही भागवत सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित को तब सुनाई जब उन्हें एक ब्राह्मण कुमार का साप लगा हुआ था कि 7 दिन में तुम्हें तक्षक नाम का सर्प काटेगा। तो महाराज परीक्षित सब कुछ छोड़ करके वैराग्य को प्राप्त होकर के गंगा नदी के किनारे बैठे हुए और बहुत सारे ऋषियों से घिरे हुए बैठे हुए थे और सभी से यही प्रश्न करते थे कि जिस व्यक्ति की साधनी मृत्यु होने वाली उसे क्या करना है, अर्थात जो मृत्यु के निकट है उसे क्या करना है। सभी से प्रश्न पूछते, कोई उत्तर नहीं दे पाता। तत्ताभवद् भगवान व्यास पुत्रो अलक्ष लिंगो निजलावतुष्टो वृत्तस्य वालैरवदूतवेशो। तत्राभवद् भगवान व्यास पुत्रो, और वही भगवान व्यास के पुत्र सुखदेव गोस्वामी का आगमन हुआ। सुखदेव गोस्वामी को आया हुआ देख करके सब लोग खड़े हो गए उनके स्वागत के लिए। सभी ऋषि बोले महाराज परीक्षित जी, अब आपकी मुक्ति आपके हाथ में आ गई। सुखदेव गोस्वामी से आप प्रश्न करो, ये आपको निश्चित रूप से आपको मुक्ति प्रदान कर देंगे, बता देंगे कि 7 दिन में कौन सा अनुष्ठान, कौन सा साधन करना है, जिस साधन के माध्यम से 7 दिन में जीव का कल्याण हो जाए। तो सुखदेव गोस्वामी का पूजन किया और बड़ा ही सुंदर से प्रश्न किया। अतः प्रक्षाम संसिद्धिम योगिनाम परमम गुरु। सुखदेव गोस्वामी से, हे सुखदेव गोस्वामी, आप परम योगियों में परम गुरु हैं, तो मैं आपसे यही पूछना चाहता हूं कि जिस व्यक्ति की साधन मृत्यु होने वाली उसे क्या करना है, किसका भजन करना है, किसका कीर्तन करना है, किसका स्मरण करना है, सुखदेव गोस्वामी प्रसन्न हो गए और तुरंत ही उत्तर देना शुरू कर दिया। वरियाने सुते प्रश्न कतो लोक हितम नपः आत्मित सम्मतः पुंसां श्रोत व्यादिषु यः। राजन तुम्हारा प्रश्न बड़ा ही उत्तम है, क्या विशेषता है? बोले कृतो लोक हितम नपः। राजन तुम्हारा ये प्रश्न समस्त लोकों का कल्याण करने वाला है। क्यों? क्योंकि ऐसे प्रश्न की सराहना बड़े बड़े विद्वान लोग करते हैं। समस्त लोकों का कल्याण होगा क्योंकि ये कृष्ण से संबंधित आपका प्रश्न है और कृष्ण का जिससे संबंध हो जाता है उसका तो फिर कल्याण ही कल्याण है। कृष्ण प्यारे से श्याम प्यारे से, कृष्ण प्यारे से जिसका संबंध है उसे हर दम आनंद प्यारे से जिसका संबंध है उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। प्यारे से जिसका संबंध है उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। प्यारे से जिसका संबंध है उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद। दुनिया से कर के किनारा ले लो सच्चे गुरु का सहारा। दुनिया से कर के किनारा ले लो सच्चे गुरु का सहारा। झूठी दुनिया से कर के किनारा ले लो सच्चे गुरु का सहारा। की दुनिया से करके किनारा ले लो सच्चे गुरु का सहारा। झूठी दुनिया का सारी दुनिया का झूठा ही रंग है। झूठी दुनिया का झूठा ही रंग है उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। कृष्ण कन्हैया लाल की कृष्ण प्यारे से जिसका संबंध है उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है।
श्याम सुंदर से अपना संबंध जोड़ लेते हैं निश्चिंत हो जाते हैं। उनकी चिंता स्वयं कन्हैया करते यक्षेम भाम्यम
उसे चिंता कभी ना सताए जन्म जन्म सुख पाए। उसे चिंता कभी ना सताए जन्म जन्म सुख पाए। थोड़ा सी पसंद है आनंद ही आनंद है।
वृंदावन बिहारी सुखदेव गोस्वामी राजन तुम्हारा परीक्षित बहुत उत्तम है क्योंकि समस्त लोकों का कल्याण करने वाला है। बड़ी सराहना की उन्होंने। और सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि आपने प्रश्न किया कि मरणासन्न व्यक्ति का धर्म क्या है, तो मरणासन्न व्यक्ति का धर्म यही है कि व्यक्ति संसार से ममता को हटाकर और भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अपने मन को लगा दे। बिहार कामान सम्मान कुमान से निष्प्रह निर्मो निरंकार शांति मद गच्छति। समस्त कामनाओं को त्याग कर, ममता को त्याग कर, अहंकार से रहित होकर जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण की शरण हो जाता है, परम शांति को प्राप्त होता है। और मानव जीवन का धर्म यही है। सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परनिष्ठया जन्म लाभ पर अंते नारायण स्मृति। सुखदेव गोस्वामी बोले राजन, मानव जीवन की सफलता तभी है, मानव जीवन की सफलता तभी है कि इस मानव जीवन को ऐसा बना लें, ऐसा ढाल लें, इस मानव जीवन को ऐसी आदत बना लें अपने भजन से, साधन से, स्वधर्म के पालन से, किसी भी साधन से इस मानव जीवन को ऐसा बना लें अंते नारायण स्मृति। जो अंत समय में भगवान नारायण का स्मरण हो तभी मानव जीवन की सफलता है, नहीं तो मानव जीवन मिला और अंतिम में भगवान का स्मरण नहीं हुआ तो व्यर्थ में ये हमारा सुनहरा अवसर हमारे हाथ से निकल गया। कि एक तो मानव जीवन बहुत दुर्लभ है, दुर्लभ हो मानसो देहो देहिनाम छड़ भंगुर तत्राव दुर्लभ मंडे वैकुंठ प्रिय दर्शनम। एक तो मानव जीवन बहुत दुर्लभ है और उसमें भी वैष्णवों का दर्शन और भी ज्यादा दुर्लभ है। तो जो व्यक्ति मानव जीवन को प्राप्त करके और संतों का संग करके, सत्संग करके इस जीवन को ऐसा बना ले कि अंत नारायण स्मृति ही, लेकिन अंतिम में भगवान नारायण की स्मृति आ जाए कोई गारंटी नहीं। जन्म जन्म ने यत्न कराही अंत राम यतन कराही अंत राम करे मुनि। जन्म जन्मांतर का खूब यत्न प्रयास करते रहते हैं परंतु कोई गारंटी नहीं कि अंतिम समय में कृष्ण का नाम उनकी वाणी पर आ जाए। इसलिए ज्ञाने प्रयासम उत्पास्य नमन्ति एव। जो व्यक्ति ज्ञान के प्रयास को, योग के प्रयास को छोड़ करके और एकमात्र भगवान श्री कृष्ण के शरणागत हो जाता है तो निश्चित रूप से अंतिम समय में उसकी वाणी पर भगवान का नाम आएगा। क्यों? क्योंकि सदा तदभाव भावितः। जो कृष्ण भावना मृत में आ जाते हैं तो सदा उसी भाव से भावित रहते हैं, चलते फिरते उठते बैठते जागते सोते हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, भगवान का नाम निकलता है। तो इसलिए श्री प्रभुपाद जी ने पूरे विश्व भर में एक ऐसी संस्था, ऐसा एक प्रभुपाद जी ने ऐसा संघ बनाया। कैसा संघ? बोले अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ। कैसा संघ? बोले कृष्ण भावना अमृत संघ। जो लोग कृष्ण भावना से भावित हो जाए
जब कृष्ण भावना से भावित हो जाएंगे तो निश्चित रूप से
अंति नारायण स्मृति होगी।
क्यों?
क्योंकि सदा तदभाव भावित,
हमेशा कृष्ण भावना भावित जो रहे हैं। इसलिए प्रभुपाद जी ने पूरे विश्व के ऊपर कितनी भारी कृपा करी है, सब लोगों को कृष्ण भावना भावित बनाने के लिए प्रभुपाद जी जगह 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 कितने बड़े विशाल है ना
ये सेंटर खोले, और सभी लोग सभी जगह क्या देश में क्या विदेश में सब लोग इसका लाभ ले रहे हैं,
और कृष्णा कृष्ण भावना अमृत में जुड़ गए हैं। तो कृष्ण भावना भावित हो जाने से निश्चित रूप से अंत में भगवान का नाम उनकी वाणी पर आएगा। तो सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि मानव जीवन की सफलता तभी है जब मनुष्य के अंतिम समय में भगवान का नाम वाणी पर आए। और फिर सृष्टि का वर्णन दूसरे स्कंदम बताया, सद्यो मुक्ति क्रम मुक्ति इसका वर्णन किया, और भागवत के 10 लक्षणों का वर्णन किया दूसरे स्कंद में। तीसरे स्कंद में बड़ा ही सुंदर भगवान कपिल देव ने अपनी देवहूति मां को बड़ा सुंदर उपदेश दिया कि मानव जीवन का परम धर्म क्या है और उसका परम कल्याण किसमें है। बोले भगवान की भक्ति में ही मानव जीवन का परम कल्याण है। उन्होंने बताया जो व्यक्ति भगवान की भक्ति नहीं करता है तो बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ा रहता है, बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में जाता रहता है, और मां के गर्भ में आकर के कितना कष्ट भोगता है। ये भगवान कपिल देव ने बताया है कि जब जीव मां के गर्भ में होता है तो कितना भारी उसे कष्ट उठाना पड़ता है। एक तो अंधकार में है, मलमूत्र के गड्ढे में पड़ा हुआ है, कीटाणु भी काटते हैं, और मां जैसा खाती है वैसा ही उसको सहन करना पड़ता है, क्योंकि जो मां खाती है उसी से पोषण होता है। यदि उसकी मां ने बहुत गर्मा गर्म चाय पी ली तो बच्चे को बड़ा भारी कष्ट होता है, उसकी त्वचा एकदम बहुत जलने लगती है, कोमल त्वचा होती है। अगर किसी मां ने इसकी जिभ्या नियंत्रण में नहीं है और जाकर के कहीं गोलगप्पे की रेडी पर जाके खूब चटपटो खूब चाट पड़ोगे खा लिए तो मिर्ची भी बच्चे को लगती है, दिया है भागवत में, क्योंकि बच्चे की त्वचा बहुत कोमल होती है, उसे बड़ी भारी पीड़ा होती है, छटपटाता है, और कुंडलाकार बिल्कुल मां के गर्भ में होता है, हाथ पैर भी सीधे नहीं कर पाता। सातवें महीने में उसे अपने कई जन्मों की स्मृति होती है कि देखो मैंने भगवान का भजन कभी नहीं किया, इसलिए इस महान संकट में, इस महान नरक में, इस घोर संकट में मुझे डाल दिया गया है। हे प्रभु, सातवें महीना भगवान से प्रार्थना करता है, हे प्रभु मैं आपको वचन देता हूं अब मैं आपका भजन करूंगा। तो सातवें महीना में जीव मां के गर्भ में भगवान को वचन देता है कि आपका भजन करूंगा, लेकिन जैसे ही 9-10 महीना के बाद मां के गर्भ से बाहर आया, जो भगवान को वचन दे के आया वो तो गया भूल। सबसे पहले माता जी को पहचाना, फिर पिताजी को पहचाना, फिर माता जी पहचान कराती है तुम्हारे पिताजी हैं, तुम्हारे भाई हैं, तुम्हारी बहन है, तुम्हारा मामा है, तुम्हारी मामी है, वो सबसे पहचान कराती है। जो असली पहचान है उसको भूले हुए हैं, तो जब असली पहचान को भूल जाते हैं, असली पहचान क्या है, भगवान श्री कृष्ण की असली पहचान, क्योंकि असली संबंध असली रिश्ता असली नाता तो हमारा भगवान श्री कृष्ण से ही है। तो असली रिश्ते नाते को भूल करके नकली रिश्ते नाते हम फंस जाते हैं, फिर बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में जाते रहते हैं। इस प्रकार कपिल भगवान ने बड़ा ही सुंदर उपदेश दिया तीसरे स्कंद में। चौथे स्कंद में बड़ी सुंदर कथा आती है कि 5 वर्ष के बालक ने, क्या नाम था उनका, भक्त ध्रुव, जो 5 वर्ष की अवस्था में अपनी माँ के कहने से। क्यों? क्योंकि उनके पिताजी ने उनको गोद में बिठाया नहीं था। सौतेली माँ ने कह दी, अरे बालक तू राजा की गोद में बैठने का अधिकारी नहीं है, तू राजा की गोद में बैठने का अधिकारी नहीं है। अगर तू राजा की गोद में बैठना चाहता है तो तपसाराध्य पुरुषम तस्वानुग्रहेण में गर्भे तुम साध्यात्मानम यदि क्षसी नपासनम। यदि राजा के आसन पर बैठना चाहता है या राजा की गोद में बैठना चाहता है तपसाराध्य पुरुषम, जो आदि पुरुष भगवान है उनकी आराधना कर और फिर उनसे प्रार्थना करना है, प्रभु मुझे ऐसा वरदान दे दो कि मैं अपनी सौतेली माँ के गर्भ से जन्म लूं, तब तू मेरी कोख से जन्म लेगा, तब तू राजगद्दी पर बैठने का अधिकारी होगा। ऐसे कठोर वचन बोले तो ध्रुव जी को बड़ी गिलानी हुई, माँ के पास आए, बहुत आकर के रोए। तो माँ ने कहा, पुत्र चिंता मत करो, देखो संसार में सब नकली माता पिता होते हैं, असली माता पिता तो भगवान श्री कृष्ण ही है। संसार के साहब क्या है, सुर नर मुनि जग की यह रीति इस संसार में क्या सुर यानी देवता, क्या मुनि, क्या मनुष्य, सब यही रीति है। एक दूसरे स्वार्थ है तो प्रेम है, और स्वार्थ नहीं तो प्रेम नहीं। निस्वार्थ प्रेम करने वाले तो एकमात्र सुर देशु सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृक्षति। सच्चे हितैषी तो एकमात्र कौन है, भगवान श्री कृष्ण है। सबके सुरदेश भी भगवान श्री कृष्ण सबके सच्चे हितैषी हैं, और तो सभी कैसे हैं, सब स्वार्थी हैं। जो व्यक्ति उसका जान लेगा ज्ञात्वा माम शांति मृक्षति, जो उसका जान लेगा कि एकमात्र श्री कृष्ण ही सबके सच्चे हितैषी हैं, तो परम शांति को प्राप्त होता है और सब कुछ ज्ञान उसको हो जाता है। तो धन है सुनीति, सुनीति ने कहा, पुत्र चिंता मत करो, तम ही वसा श्रय भृत्य वस्तलम मुमुक्ष मृग्य। अरे पुत्र चिंता मत करो, जो भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण है उनकी शरण में जाओ। अनन्य भावे निर्धर्म भावित, और अनन्य भाव से उनका चिंतन करो। अनन्य चिंतन तो माम ये जना पर उपास्ते तेसाम नित्याभिक्ता नाम योगक्षेम बहाम्यम। भगवान ने कहा है जो अनन्य भाव से मेरा चिंतन करता है तो भगवान सारी उसकी चिंताओं को अपने हाथ में ले लेते, उसका योगक्षेम सब बहन करते हैं। जाओ पुत्र वन में जाओ, तो ध्रुव जी ने वन में जाकर के और नारद जी के मार्गदर्शन में जमुना स्नान आचमन करके, और जो नारद जी ने मंत्र दिया था ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जप करके एक महीना तो ऐसा जप किया कि तीन दिन के बाद एक बार थोड़ा सा कोई बेर या केत का फल खाते थे। दूसरे महीना में तपस्या और बढ़ा दी, दूसरे महीना में 6 दिन के बाद सूखे पत्ते खाते थे, तीसरे महीना में तो उन्होंने 9 दिन के बाद एक बार जल पीते थे। पर विचार किया, अभी भगवान के दर्शन क्यों नहीं हो रहे, लगता है मेरी साधना कच्ची है, अभी साधना और बढ़ानी चाहिए। तो 4th महीना में तो 12 दिन के बाद केवल वायु का आहार करती, वायु का भक्षण। जब फिर भी गोविंद के दर्शन नहीं हुए तो 5वें महीना में एक पैर से खड़े हो गए, एक पैर के एक अंगूठे से,
और बस भगवान का ध्यान करने लगे। जो नारद जी ने बताया था कि भगवान की कैसी सुंदर छवि है, बोले श्याम वर्ण है, श्याम उनका वर्ण है, पीतांबर धारण करने वाले हैं, चार भुजाएं हैं, शंख चक्र गदा पद्म उनके हाथ में है और उनके कमल जैसे बड़े बड़े नेत्र हैं और बिंबा फल जैसे उनके होठ हैं और बड़ी सुंदर नुकीली उनकी नाक है और बस वो बड़ी प्रेम भरी दृष्टि से भक्तों की ओर देखते हैं। बोले भगवान की सुंदर छवि का ध्यान करना, तो ध्रुव जी वही भगवान की सुंदर छवि का ध्यान करते करते और हरि का नाम वही ओम नमो भगवते वासुदेवाय जप रहे हैं। फिर भगवान नारायण को वहां आना पड़ा। भक्ति हो तो ध्रुव की जैसी, जो स्वयं भगवान दौड़े दौड़े है ना, दक्ष मधुर बनम, अपने भक्त को देखने के लिए मधुबन में भगवान नारायण को आना पड़ा। तो भगवान ने ध्रुव पर कृपा की। यद्यपि ध्रुव ने भगवान की भक्ति की थी कि हमें बहुत बड़ा राज्य मिले, यहां तक कि उन्होंने नारद जी से कहा था कि आप ऐसा साधन बता दो जो मुझे बहुत ऊंचे पद की प्राप्ति चाहिए।
पदम त्रवनोत कृष्णम जिगीषो साधुवत मे,
ऐसा पद चाहिए बोले त्रवन कृष्ण उत्कृष्टम, तीनों लोकों से ऊंचा पद हो।
ब्रूहिणी अस्मत् पितृ भी ब्रह्म,
तो आज तक हमारे पितृ भी, हमारे दादे परदादे कोई भी ऐसे पद पर नहीं बैठे हो। यद्यपि ध्रुव की इच्छा थी बहुत बड़ा पद चाहिए हमें, अर्थार्थी थे वो, लेकिन भगवान की भक्ति ऐसी होती है, जो व्यक्ति भगवान की भक्ति अकाम सर्व कामो वह मोक्ष काम गांधी तीव्र भक्ति योगे ना जीत पुरुषम परम, कोई व्यक्ति निष्काम भाव से या समस्त कामनाओं को लेकर के या मोक्ष की इच्छा से भगवान की तीव्र भक्ति करता है तो परम उसको लाभ मिलता है। भगवान की भक्ति करने से भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति मेरी भक्ति करता है और भक्ति इच्छा भले ही संसार की इच्छाओं को लेकर के भक्ति करता है, जब तीव्र भक्ति योगन करता है तो मैं उनकी इच्छाओं को ऐसा निर्वीज कर देता हूं जैसे भुने हुए चने, जैसे भुने हुए चने को कोई खेती में बोए है उसमें अंकुर निकलेगा नहीं निकलेगा, उसी प्रकार जो व्यक्ति किसी भी कामना से भगवान की भक्ति करता है तो भगवान की भक्ति में यह विशेषता उसका हृदय शुद्ध हो जाता है, तो संसार की कामनाओं से रहित हो जाता है। भुक्ति मुक्ति कामी सकल असान और कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत, तो कृष्ण भक्त निष्काम हो जाता है। फिर यद्यपि भगवान ने कहा है ध्रुव जी तुमने बहुत भारी तपस्या करी है, मांगो कुछ। बोले प्रभो वरम नहीं याचति, अब मुझे वर मांगने की कोई इच्छा नहीं है, अब मुझे सब कुछ मिल गया, आपसे बड़ी कौन सी वस्तु जिसे मैं मांगू। जबकि ध्रुव ने बहुत बड़ी चीज मांगने की इच्छा से तपस्या की थी तो उनकी इच्छाएं भी नष्ट हो गई। कहने का तात्पर्य है भगवान की भक्ति में बहुत बड़ी शक्ति है। तो चौथे स्कंद में बाल भक्त ध्रुव ने भगवान की ऐसी भक्ति करी तो पांच छह महीना में भगवान की प्राप्ति कर ली। क्यों प्राप्ति कर ली? बोले उन्होंने बड़ा नियंत्रण किया था अपने पर। हम लोग खाने में अगर ठीक से नियंत्रण करेंगे तो हमारा हृदय पवित्र हो सकता है, क्योंकि हम जैसा खाएंगे अन्न वैसा बनेगा मन। आजकल लोगों से कहो भाई प्याज लहसुन छोड़ दो, नहीं छोड़ पाते, लेकिन ध्रुव जी ने कितना त्याग किया, खाने पर कितना नियंत्रण किया,
अरे हम ऐसा नियंत्रण नहीं कर सकते, कम से कम जो जो खाने योग्य वस्तु नहीं है उसे तो नहीं खाएं कम से कम, क्योंकि हम जैसा खाएंगे अन्न वैसा बनेगा मन। इसलिए हमारा आहार शुद्ध होना चाहिए। तो हमें शिक्षा ध्रुव से ये मिलती है, ध्रुव जी से, तो सबसे पहले अपना आहार शुद्ध किया। आहार शुद्ध हो, सत्व शुद्ध हो, सत्व शुद्ध हो ध्रुवमति ही। पांचवें स्कंद में बड़ी सुंदर कथा भरत जी की आती है, आप लोगों ने सुना होगा। जो भगवान ने गीता में कहा, यम यम बाप स्मरण भाव त्यंते कले ब्रह्म तम तमे वेद कौनते सना तदभाव भाविता। भगवान का हे कौनते, हे अर्जुन, जो व्यक्ति अंतिम समय में जिस जिस भाव का स्मरण करता हुआ और शरीर को त्यागता है तो उसी को प्राप्त होता है। क्यों? क्योंकि सदा तद्भाव भाविता है। तो जबकि महाराज भरत चक्रवर्ती सम्राट थे, भगवान सब देव के 100 पुत्रों में सबसे बड़े थे वो भरत महाराज, और उन्होंने युवा अवस्था में वैराग्य हो गया, अपनी पत्नी को त्याग दिया, पुत्रों को त्याग दिया, सबको त्याग करके गंडकी नदी किनारे जाकर के पर्ण कुटी बना करके भजन करते थे। लेकिन एक हिरण में आसक्त हो जाने के कारण उनको हिरण बनना पड़ा। तो हमें इस प्रसंग से ये शिक्षा मिलती है कि हमें संसार में रहना है, लेकिन कैसे रहें? जैसे जल ज्यो जल में कमल का फूल रहे। जैसे कमल का फूल पानी से लिप्त नहीं होता, बूंद खड़ी हो जाती है उस पर, उसी प्रकार हम परिवार में रहें, संसार में रहें, लेकिन संसार से परिवार से लिप्त न हो, आसक्त न हो। आसक्त एकमात्र किससे हो? केवल कृष्ण से हो। यदि हम संसार से आसक्त हो गए, संसार की किसी वस्तु से किसी व्यक्ति से आसक्त हो गए, तो हमको फिर वही बनना पड़ेगा। जैसे महाराज भरत के लिए हिरण बनना पड़ा, पर भगवान की भक्ति व्यर्थ नहीं जाती है। हिरण शरीर में भी उनको उनको अपने पूर्व जन्म का स्मरण रहा, क्यों भगवान का है ना कि नेहा विक्रम नास्वस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। भगवान की भक्ति कभी व्यर्थ में नहीं जाती, वो हर समय हर जीवन में काम में आती है। अभी भी काम में आएगी, आगे भी काम में आएगी, आगे भी काम में आएगी, वो भक्ति कभी व्यर्थ नहीं आती। स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। भगवान का थोड़ी भी कोई मेरी भक्ति करता है तो महान संकट से रक्षा मैं करता हूं, ये भगवान का वचन है। तो हमें ये शिक्षा मिलती है इस पांचवें स्कंद में भरत महाराज से। और पांचवें स्कंद के अंत में 28 प्रकार के नरकों का भी वर्णन किया, 28 प्रकार के नरकों का वर्णन किया। तो महाराज परीक्षित बड़े भयभीत हो गए, गुरु जी ये नरक तो बड़े भयंकर हैं, अरे इस नरकों में फंस करके जी फिर तो करोड़ों करोड़ों जन्मों तक नरकों में ही पड़ा रहेगा, आखिर कोई इनसे छूटने का कोई प्रायश्चित होगा। तो छठवें स्कंद में सुखदेव गोस्वामी बड़ा सुंदर प्रायश्चित बताया है। सकृत मना कृष्ण पदारविंदयो निवेशितं तत् गुणरागयोरिह न तेयमं पाशभृतस्य तद्भटां स्वपनीय पश्यन्ति हि चीर्णनिस्तृतः। बड़ा ही सुंदर उन्होंने प्रायश्चित बताया है। सुखदेव गोस्वामी कहते राजन, सकृत मना कृष्ण पदारविंदयो, जिसका मन एक बार भी भगवान श्री कृष्ण के चरणों में लग जाए, न तेयमं पाशभृतस्य तद्भटां, उसके पास यमराज के दूत सपने अपि पश्यन्ति हि चीर्णनिस्तृतः, सपने भी उसके पास यमराज के दूत नहीं आ सकते। यही सबसे बड़ा प्रायश्चित है, कौन सा है? कि अपने मन को भगवान श्री कृष्ण के चरणों में लगा दे, भगवान के शरणागत हो जाए। तो भगवान का ही नियम है, भगवान ने कहा है सर्वधर्मान प्रत्यज्य माम एकम शरणम ब्रज अहम पाम सर्व पापेभ्यो मोक्ष स्वामी मा सुचः। भगवान ने कहा है सभी धर्मों को छोड़ करके आ जाओ मेरी शरण में, ऐसा करोगे तुम्हें तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। वहां सोचा इसमें कोई सोच विचार करने की जरूरत नहीं।
सन्मुख होए जीव मोई जब
व्यक्ति मेरे सन्मुख तो हो, मेरे नाम का जप तो करे, तो कई कई जन्मों के पापों से मुक्त कर दूंगा। जन्म कोटि अगर नाश हो तो वही कोटि कोटि जन्मों के पापों से उसे मुक्त कर दूंगा। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्ष स्वामी मां सोचा। तो सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि पापों से छूटने का सबसे बड़ा प्रायश्चित यही है कि सकृत मना कृष्ण पदारविंदे हो, एक बार भी जो भगवान श्री कृष्ण के चरणों के शरणागत हो जाता है तो भगवान सभी प्रकार के पापों से उसे मुक्त कर देते हैं। तो उदाहरण दिया अजामिल का। अजामिल ने तो केवल अपने पुत्र का ही नाम लिया था, लेकिन भगवान के पास आ गए और कहा छोड़ो इसे छोड़ो। यमदूत बोले भाई आप कौन हो जो हमारे कार्य में बाधा दे रहे हो? बोले बताएंगे बादन पहले छोड़ो इसको हमारे भक्त को। बोले ये भक्त कहां से आ गया भाई, ये तो बहुत बड़ा पापी है। और नहीं नहीं ये धर्मात्मा है, यम के दूत कहते हैं ये तो पापी है और भगवान के सेवक कहते हैं क्या ये धर्मात्मा है। यमराज के दूत बोले महाराज आपसे समझने में भूल हो रही है, महापापी है, सारे नियम तोड़ दिए, वैदिक नियमों को एक नहीं माना, सारे नियम को तोड़ दिया इसने। तो यम के दूत एक हट और भगवान के दूत एक हट। यम भगवान के दूत कहते ये कौन है धर्मात्मा है, पर यमराज के दूत कहते ये क्या है बोले पापात्मा है। आखिर भगवान के सेवकों ने पूछा ये बताओ यम के दूत हो तुम, बार बार उनको पापात्मा कहते हो, तो पाप की और धर्म की पुण्य की परिभाषा क्या है? प्रश्न कर दिया भगवान के सेवकों ने, प्रश्न किया यमराज के दूतों से, कोई साधारण प्रश्न नहीं है। तो अब यम के दूत बोले महाराज अरे सीधी सादी बात है, बोले वेद प्रणहितो धर्मो यधर्मा तद विपर्ययः, वेदो नारायण साक्षात स्वयं भूत सुप्रमः। यमराज के दूत बोले महाराज सीधी सादी बात है, वेद प्रणहितो धर्मो, जो वेदों में कहा है वेद शास्त्रों के, ये करो भाई नियमों का पालन करो, शराब मत पियो, पर स्त्री गमन मत करो, है ना, झूठ मत बोलो, इत्यादि इत्यादि वेदों ने जो मना किया है वेद शास्त्रों में, बोले वही धर्म है। जो व्यक्ति वेदों के अनुसार चलता है तो वो धर्म है। और ही तद विपर्जय, जो उनके विपरीत जो विपरीत चलता है वो अधर्म है, सीधी सादी बात है। और देखो वेद भी कोई ऐसी छोटी मोटी पुस्तक नहीं, वेद हो साक्षात नारायण, वेद साक्षात नारायण ही स्वरूप है, भगवान नारायण ने कहा है। स्वयंभू सुषमा, ऐसा हमने अपने आचार्य से अपने स्वामी से स्वयंभू यानी यमराज से सुना है। और यमराज भी कोई साधारण नहीं, बारह महाजनों में से एक है, वो भी महाजन है, महाभागवत है। बोले महाभागवत के मुख से हमने सुना है, जो वेदों में कहा है उसके अनुसार चलना धर्म है और उसके विपरीत चलना अधर्म है। तो देखो इस अजामिल ने तो हमेशा वेदों के विपरीत ही काम किया है, सारे वेदों के नियमों को तोड़ दिया है, ये पापी है। भगवान के दूत पर नहीं नहीं ये पापी नहीं है, अयम ही कृत निर्वेश जन्म कोटे सामपि यद व्यहार विवसो नाम स्वस्त्यैनं हरे। भगवान के पार्षद बोले अयम ही कितने वे सो जन्म को टेहन सामपी, अब तो कई कई जन्मों के पापों से छूट गया। कैसे? बोले यत विजहार वे सो नाम स्वस्थ एनम हरे। अरे जो कोई व्यक्ति व्यवस्थावश या किसी तरह से भूल से गिरते पड़ते किसी तरह से भगवान का नाम इसकी वाणी पर आता है, हे हरे, हे राम, हे कृष्ण, हे गोविंद, अरे वाणी पर जिसके नाम किसी भी तरह से आता है, भाव कुभाव अनक आलस हूं नाम जपत मंगल जप सहु। ये नाम की विशेषता है। और इसने भी हमारे प्रभु का नाम लिया है, पर हमारे प्रभु का देखो ये नियम है, अंत काली चमामे स्मृति मुक्ता कलिवरम। जो व्यक्ति अंतिम समय में भगवान कहते मेरा नाम लेता है, समद भाव याति नस्त्यत्र संशय, वो फिर मुझे प्राप्त होता है, मेरे धाम को आता है, इसमें कोई संशय है ही नहीं। तो इसने अंतिम समय में हमारे प्रभु का नाम लिया है। यम के दूत बोले देखो आपसे समझने में गलती हो गई है, इसने तुम्हारे प्रभु का नाम थोड़े ही लिया है। बोले फिर? अरे यार तो अपनी बेटा को नाम लिया है, इसने तो अपने पुत्र का नाम लिया है, इसके बेटा का नाम नारायण है, और आप समझ गए कि नारायण का नाम लिया है। भगवान के पास बोले फिर भी पापों से छूट गया ये। बोले क्यों? अरे इसके बेटे का नाम आज कुछ समय ही पहले नारायण रखा होगा, हमारे नारायण क्या है? गोविंद आदि पुरुषम तमहम भजामि, हमारे गोविंद आदि पुरुष है भगवान नारायण। और देखो हमारे प्रभु का नियम है, चाहे कोई किसी भाव से यदि अंतिम समय में उसकी वाणी पर भगवान का नाम आता है तो भगवान के धाम को जाता है। इसलिए छोड़ो इसे, भागो यहां से। यम के दूतों को जबरदस्ती भगा दिया भगवान के पार्षदों ने, तो भाग गए वहां, तो जाकर के अपने यमराज के पास पहुंचे। यमराज बोले अरे भाई खाली हाथ कैसे आए, वो कहां है पापी? बोले कौन सा पापी? वही अजामिल पापी। अरे महाराज क्यों भूल रहे हो, अजामिल पापी नहीं है? अरे भाई पापी है। ठीक है तो बुलाओ मुनीम जी को, देखते हैं कितने पाप है कितने पुण्य उसके। मुनीम जी कौन है? चित्रगुप्त मुनीम जी है। उनसे कहा देखो भाई खोल के देखो भाई, अजामिल नाम के व्यक्ति ने कितने पुण्य किए कितने पाप किए हैं, वो सब पापों से के छूट गया, कौन सा ऐसा उसका बढ़िया कोई पुण्य धर्म बन गया है? तो चित्रगुप्त ने देखा महाराज अजामिल के इतने पाप है, मैं तो लिखते 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 मेरी बही फुल हो गई पूरी, जगह ही नहीं रही इसमें, मैंने तो लिखना ही छोड़ दिया, कब तक लिखो, इतना पाप ही है। बोले हाँ, फिर कौन सा पुण्य बन गया ऐसे? तो भगवान यमराज के पार्षद बोले उसने अंतिम समय नारायण कहा था। यमराज बोले धीरे बोलो धीरे, नारायण के नाम में बहुत बड़ी शक्ति है, अरे नारायण नाम का ही हमारे जो इसमें है नरकों में लोग पड़े उनके कानों में पहुंच गया नारायण नाम, तो पूरा नरक खाली हो जाएगा, हमारा बिजनेस ही ठप पड़ जाएगा पूरा फिर, है ना। एकांत में ले गए, क्योंकि भगवान के नाम में इतनी शक्ति है, जितना हम बाली से कहेंगे उतना लाभ, कान से सुनेंगे उतना ही लाभ, ये भगवान के नाम में शक्ति है। तो एकांत में ले गए और उनसे पूछा कि अब बताओ, तो सारी बात उन्होंने बताई। तब यमराज बोले मेरे पुत्रों मेरे सेवकों को जानते हो भगवान नारायण सबके नियंता है, हम तो उनके दास हैं, उनके सेवक हैं, उन्होंने हमको ये सेवा दी है कि जो जो पापी हैं उन लोगों को दंड देना, ये हमको हमारे प्रभु ने हमको सेवा दे दी है, मैं तो अपने प्रभु का दास हूं। अच्छा ऐसी बात है, आपने हमको पहले क्यों नहीं बताई, हम तो ये समझते कि आप ही भगवान हो, क्यों यम के दूत समझते थे कि यमराज ही भगवान है। बोले मैं भगवान नहीं हूं, भगवान हमारे प्रभु, और भगवान के नाम की महिमा हम 12 लोग जानते हैं,
स्वयंभू नारद शंभु कुमार कपिलो मनु प्रहलादो जनको भीष्मो बलिर्व्यासकीयम्।
भगवान के नाम की महिमा इतनी है, इतनी महिमा है कि भगवान के नाम की महिमा को हम बारह महाजन कुछ कुछ जानते हैं, पूरी तरह से फिर भी नहीं जानते, क्योंकि भगवान के नाम की महिमा तो भगवान भी नहीं जानते। इतना भगवान का नाम बड़ा ही शक्तिशाली है।
हरि से बड़ा हरि का नाम, हरि से बड़ा हरि का नाम, हरि से बड़ा हरि का नाम, हरि से बड़ा हरि का नाम। अंत में निकला ये परिणाम, अंत में निकला ये परिणाम, अंत में निकला ये परिणाम, अंत में निकला ये परिणाम। हरि से बड़ा हरि का नाम, हरि से बड़ा हरि का नाम।
भगवान को खंबे में से प्रकट होना पड़ा, और ऐसा अद्भुत रूप नरसिंह भगवान की
जय।
नरसिंह भगवान के रूप भगवान प्रकट हुए और अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा की और दुष्ट नरसिंह उसका हिरण्यकश्यप का वध किया। और श्री सातवें स्कंद में फिर वर्णाश्रम धर्म का भी निरूपण किया है कि वर्ण और आश्रम का किस प्रकार जीव को पालन करना है। आठवें स्कंद में सुखदेव गोस्वामी ने बड़ी सुंदर कथा बताई कि देखो संसार में कोई किसी का नहीं है, जब आपत्ति आती है ना तो सभी साथ छोड़ जाते। गजेंद्र कितने संकट में था बेचारा, तो उस समय उसके मित्र, उसकी पत्नियां, उसके पुत्र सभी छोड़ गए। जब सभी छोड़ गए संकट में आपत्ति में, कोई साथ में नहीं रहा, तब किसको पुकारा? भगवान नारायण को पुकारा, और भगवान नारायण ने उनकी रक्षा की। तो उसी प्रकार हम सब लोग क्या हैं? गजेंद्र हैं। और ये संसार क्या है? सागर है। और इसमें ग्रह क्या है? बोले काल रूपी जो मृत्यु रूपी ग्रह मोह फाड़े बैठा हुआ है, कब पकड़ लेगी, कब पकड़ लें। और उस ग्रह से
कालरूपी ग्रह से न पत्नी छुड़ा पाएगी, न पति छुड़ा पाएगा, न पिता छुड़ा पाएगा, न पुत्र छुड़ा पाएगा, न धन काम में आएगा। उस समय कोई काम में आने वाला नहीं। उस समय कौन काम में आएगा? भगवान नारायण ही काम में आएंगे। जैसे गजेंद्र के काम में केवल नारायण ही उस समय आए थे और कोई काम में नहीं आया था। तो यह हमें गजेंद्र मोक्ष से शिक्षा मिलती है। और इसी में भगवान ने समुद्र मंथन करा करके और देवताओं को अमृत पान कराया। और इसी आठवें स्कंद में भगवान वामन का अवतार हुआ। और फिर नवें स्कंद में जाकर के सूर्यवंश और चंद्रवंश दोनों वंशों का बड़ा विस्तार से वर्णन किया। सूर्यवंश चंद्रवंश राजाओं का वर्णन किया। और अंत में नवें स्कंद में शुकदेव गोस्वामी ने बड़ी सुंदर कृष्ण की कथा सुनाई।
कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल मेरो मुरली मनोहर नंद लाला। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल मेरो मुरली मनोहर नंद लाला। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल गोविंद गोपाला मेरो मुरली मनोहर नंदलाला।
मेरो मुरली मनोहर नंदलाला।
मेरो मुरली मनोहर नंदलाला।
मेरो मुरली मनोहर नंदलाला।
मेरो मुरली मनोहर
गोविंद गोविंद गोपाला। नवें स्कंद में शुकदेव गोस्वामी ने सूर्यवंश का वर्णन किया। और सूर्यवंश में भगवान श्री राम आए, चंद्रवंश में आए श्याम और सूर्यवंश में आए राम। शुकदेव गोस्वामी ने श्री कृष्ण की कथा सुनाने से पहले राम कथा सुनाई। पहले नवें स्कंद में, क्योंकि शिल प्रभुपाद जी कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति सीधे दसवें स्कंद में नहीं पहुंच सकता, नहीं पहुंचना चाहिए। जब तक शुरू से हम श्री कृष्ण के बारे में ठीक से नहीं समझ लें, तब तक कृष्ण की लीलाओं को नहीं समझ सकते, भूल कर बैठेंगे। क्योंकि कृष्ण को समझना इतना आसान नहीं है। राम का नाम भी बहुत सीधा है, राम, और उनका काम भी बहुत सीधा है। भगवान श्री राम का नाम क्या है? श्री राम। और उनको क्या बोलते हैं? कौन सा पुरुषोत्तम? मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की
जय।
भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। भगवान श्री राम कभी मर्यादा से बाहर गए नहीं, और भगवान श्री कृष्ण कभी मर्यादा में रहे नहीं, है ना। सारी मर्यादाएं तोड़ दी उन्होंने, इसलिए उनका नाम क्या है?
लीला पुरुषोत्तम।
मर्यादाएं तोड़ने के बाद भी शास्त्रों ने लिखा है चोरी मत करो, लेकिन श्रीमान जी को डट के चोरी करी ना, और सरेआम चोरी करी दिन में दोहरे दोपहर, है ना। वेद शास्त्र कहते भाई अपनी स्त्री छोड़ के दूसरी स्त्री पर दूसरी स्त्री के साथ रमण मत करो। उन्होंने खूब रास विहार किया दूसरी स्त्रियों के साथ में। यानी भगवान श्री कृष्ण मर्यादा बिल्कुल रहे नहीं, और फिर भी उनके जन्म कर्म कैसे हैं?
जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्य तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नयति मामेति सो अर्जुन।
भगवान कहते अर्जुन मेरे जन्म और कर्म दोनों ही दिव्य हैं, साधारण नहीं है। जन्म और कर्म दोनों ही दिव्य हैं, साधारण नहीं है। जो व्यक्ति मेरे जन्म और कर्मों के बारे में तत्वतः जान लेगा तो त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म न इति, फिर वो इस शरीर को त्याग करके फिर पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होगा। किसको प्राप्त होगा? बोले माम इति, मुझे प्राप्त होगा, मेरे धाम को आएगा। तो भगवान श्री कृष्ण के जन्म और कर्म को समझना आसान नहीं है, कृष्ण को समझना बहुत टेढ़ी खीर है, क्योंकि उनका नाम भी टेढ़ा। कोई कहता है कृष्ण, कोई कहता है कृष्ण, कोई कहता है किशन, उनके नाम को भी ठीक से लेने बड़ी परेशानी होती है। नाम भी टेढ़ा और उनका काम भी टेढ़ा, और श्रीमान जी बोलते भी टेढ़े, बोलते भी टेढ़े। कहते हैं कि ब्रह्म बंधन हातव्य आताताई बदारणा, मैं ये वो भय मामनातम परिपाहि अनुशासनम। जब अर्जुन अश्वत्थामा को पकड़ के ले आए थे, द्रौपदी के पुत्रों को मारा था इसलिए, तो द्रौपदी देख करके उवाच सा संतस्य बंदरान एनम सती मुच्यताम ये सब ब्राह्मणो नितराम गुरु। द्रौपदी ने कहा अरे छोड़ो इन्हें, छोड़ो ये ब्राह्मण पुत्र हैं, गुरु पुत्र हैं, इनको मारना ठीक नहीं, छोड़ो इन्हें। तो धर्मराज युधिष्ठिर के लिए बात बहुत बढ़िया लगी। नकुल सहदेव भी सहमत हो गए, अर्जुन भी राजी, लेकिन भीमसेन से सहन नहीं हुआ, गदा उठा ली। अरे ये दुष्ट छोड़ने के योग्य है, इसे मैं मारूंगा, गदा लेके डोड़ी। पर भगवान का दादा ठहरो, ब्रह्म बंधुन हातव्य आताताई वदारहन मयो मोय भय भावना तुम परिपाहि अनुशासन। भगवान बोले दादा जानते हो जो ब्राह्मण चाहे कितना ही ब्रह्म बंधु क्यों न हो, लेकिन वो वध करने के योग्य नहीं होता, ब्राह्मण को कभी नहीं मारना चाहिए। और आता ताई चाहे कोई भी हो, उसे तो मार देना ही चाहिए। भीमसेन बोले कन्हैया तुमको समझना बहुत टेढ़ी खीर है, तुम जैसे टेढ़े चलते हो और टेढ़ा ही तुम्हारा काम है, टेढ़े ही तुम बोलते हो, तुम्हें तुम्हारा बोलना भी समझना बहुत मुश्किल है। बताओ क्या तो ब्राह्मण को नहीं मारना चाहिए और आता था इसे मार देना ही चाहिए? तो ये तो था आता था, ये इसे मार भी दो, छोड़ भी दो, मार भी दो, दोनों काम कैसे हो सकते हैं? भगवान बोले ये दोनों बातें मैंने ही वेदों शास्त्रों में कही है, और ये मेरा प्रिय सखा अर्जुन समझ सकता है इसके लिए। तो अर्जुन समझ गए, तो अर्जुन ने उस ब्राह्मण के मस्तक की मणि को निकाल दिया, गाली देके, धक्का देके, अपमान करके बाहर निकाल दिया। बोले यही वो ब्राह्मण का, ब्रह्म बंधु का यही तो दंड है, उसे देहिक दंड, प्राण दंड नहीं देना चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण को समझना बहुत मुश्किल है, वो बोलते भी टेढ़े हैं, चलते भी टेढ़े हैं, और खड़े भी श्रीमान जी बिल्कुल टेढ़े खड़े होते हैं। आप देखो किसी मंदिर में बस टेढ़ी टांग वाला ही होगा वो, और देख भी टेढ़े ही रहे होंगे, है ना? मोह होगा इधर को, श्रीमान जी नजर किधर को होगी? नजर दूसरी तरफ होगी। तो कृष्ण को समझना बहुत टेढ़ी खीर है, उनको समझने में मोहियम क्यत सूरया, बड़े बड़े देवता भी, ऋषि मुनि भी मोहित हो जाते। ब्रह्मा जी भूल कर बैठे, बछड़ी छुड़ा ले गए, इंद्र भी भूल गया जो ब्रजवासियों को मारना चाहा, अरे जिनके रक्षा हुआ श्री कृष्ण। बड़े बड़े देवता भी भूल कर बैठते हैं कृष्ण को समझने के लिए। इसलिए कृष्ण को समझना है तो पहले राम को समझो। राम का काम भी कितना सीधा, मर्यादा पुरुषोत्तम, उन्होंने भगवान श्री राम ने अपने आचरण से लोगों को शिक्षा दी कि एक पुत्र का कर्तव्य है कि माता पिता की आज्ञा का कभी उल्लंघन नहीं करे। जो भी माता पिता कहें, चाहे भले ही प्राणों का संकट ही क्यों न हो, पर माता पिता की आज्ञा का कभी उल्लंघन नहीं करे। भगवान श्री राम ने स्वयं ये करके आचरण करके लोगों को शिक्षा दी। जो माता पिता की आज्ञा के लिए राज्य भी छोड़ना पड़ा, वनवन भटकना पड़ा, और उन्हें चारों भाई कितने रहते थे ये भी शिक्षा दी कि सभी भाइयों को आपस में प्रेम में रहना चाहिए। और भगवान श्री राम ने एक एक पत्नी व्रत रख करके ये शिक्षा दी कि केवल स्त्री ही पतिव्रता नहीं, मनुष्य को भी पत्नी व्रता होना चाहिए। एक पत्नी व्रत मनुष्य का भी होना चाहिए। भगवान श्री राम ने बहुत सारी शिक्षाएं अपने आचरण से ही हमको दी। और फिर सूर्य वंश का वर्णन करने के बाद सुखदेव गोस्वामी ने चंद्रवंश का वर्णन किया। देखो, आज ये कथा मैंने आपको केवल भूमिका जमाई है, संक्षिप्त में सुनाई है, क्योंकि कथा भी ऐसी हो गई था पूरी हो गई है ना, क्यों पूरी कथा तो कोई कह नहीं सकता। अब मेरे लिए जो कथा करनी है वो आज से कृष्ण कथा ही सात दिन करनी है। आज का दिन तो खैर निकल ही गया इस भूमिका जमाने में, अब 6 दिन पूरी कृष्ण कथा ही चलेगी। अब सुखदेव गोस्वामी सूर्यवंश का वर्णन करने के बाद फिर कहते हैं, राजन अब मैं आपको चंद्रवंश सुनाता हूं, और इस चंद्रवंश में जो यदुवंश है बड़ा ही पवित्र वंश है। बोले चंद्रवंश का वर्णन इस प्रकार है, भगवान श्री नारायण के हुए ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी के हुए अत्रि मुनि, अत्रि मुनि के सोम यानी चंद्रमा, और चंद्रमा के हुए बुध, बुध के पूर्वा, पूर्वा के हुए आयु, आयु के नवोस, नवोस के यति, याति, संयाति, आयति, व्यति, कृति, ये 6 पुत्र हुए। और महाराज याति के फिर 5 पुत्र हुए, उनकी 2 पत्नियां थी, एक पत्नी शुक्राचार्य की पुत्री और एक बृहस्प्रभा की पुत्री थी। शुक्राचार्य की देवयानी जिससे 2 पुत्र हुए यदु उत्तरवसु, और जो शर्मिष्ठा थी उनसे 3 पुत्र हुए दुहु अनु और पुरु। इसी पुरु वंश में आगे चल के दुष्यंत हुए जो चक्रवर्ती सम्राट हुए, दुष्यंत के भरत हुए, और इन्हीं भरत के वंश में महाराज रंति देव हुए जो 48 दिन तक उन्होंने भोजन नहीं किया, दूसरों को भोजन कराते रहे, 48 दिनों भोजन मिला वो भी उन्होंने बांट दिया। सुखदेव गोस्वामी कहते राजन अब यदुवंश का वर्णन करते हैं।
वर्णयामि महापुण्यम सर्व पाप हरम नलाम यदुर्वंशे नरः श्रुत्वा सर्व पापै प्रमोच्यते।
तो सुखदेव गोस्वामी कहते राजन महाराज यदु का वंश बड़ा ही परम पवित्र है। महाराज यदु का वंश इतना परम पवित्र है कि मनुष्यों के सारे पापों को नष्ट कर देने वाला है। जो मनुष्य इसका श्रवण करेगा वो सभी पापों से छूट जाएगा। सर्व पापै प्रमुच्यते।